शिफात का बयान, इसमें से हम जो टॉपिक करेंगे वो है इज़्ने शिफात का मुस्तहक कौन है, कौन है जिसको हक दिया जाएगा कि वो सिफारिश करे। ये भी बड़ी अहम बात है, सिफारिश पे तो अभी हम आए नहीं, अभी तो हम उसके इर्द गिर्द की चीज़ें पढ़ रहे हैं। मिसाल है कि मेरे पास क्या अथॉरिटी है कि कोई मुझे कहे जाओ तुम सिफारिश करो, ये मुराद है। क़यामत के रोज़ इसने शिफात किससे मिलेगा, ये सवाल बहुत अहम है। बहुत से लोगों ने दुनिया में ख़ुद ही अपने सिफारशी मुतय्यन कर रखे हैं कि फ़लाँ वलीउल्लाह या बुज़ुर्ग क़यामत के रोज़ हमारे सिफारशी होंगे और अल्लाह ताला से हमें बख्शवा लेंगे। क्या दुनिया में अज़ खुद किसी वली या बुज़ुर्ग को अपना सिफारशी मुकर्रर कर लेना क़यामत के रोज़ किसी के काम आएगा या नहीं? ये है वो सवाल जिसका जवाब हम किताब व सुन्नत की रोशनी में तलाश करना चाहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अंबिया, मलाइका और अहले ईमान सिफारिश करेंगे, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। जहाँ तक मलाइका और अंबिया का ताल्लुक है, इनका मामला बिल्कुल वाज़ेह है। सारे के सारे अंबिया अपनी अपनी उम्मत के गुनाहगार लोगों के लिए सिफारिश करेंगे, ये हाईलाइट करें। सिफारिश सिर्फ नबी सल्लम के साथ नहीं है, हर नबी अपनी उम्मत के बारे में सिफारिश करेगा और फरिश्तों में से अल्लाह ताला जिसे चाहेंगे इज़्ने शिफात देंगे। मोमिन यानी औलिया, सुलहा, उलमा और शोहदा में से किस किस को इज़्ने शिफात मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि कौन वाकई अल्लाह के नज़दीक वली है, कौन वाकई अल्लाह ताला के नज़दीक सालेह है, कौन वाकई अल्लाह के नज़दीक आलिम है और कौन वाकई अल्लाह के नज़दीक शहीद है। ये अल्लाह के नज़दीक लफ्ज़ से क्या पता चल रहा है? देखिए, हम तो राह चलते को भी शहीद कह देते हैं, हम तो सौ सौ लोगों के कातिलों की भी मौत पे कहते हैं ये शहीद उम्मत है, ये शहीद फलां है। तो मुझे आपको नहीं पता, अल्लाह को पता है कौन वाकई असल कौन है। हम एक दूसरे के ज़ाहिर पे क्यास कर सकते हैं लेकिन अंदर से हमारी नेकी किसकी कितनी है ये अल्लाह को पता है। हदीस शरीफ से मालूम होता है कि बाज़ लोग जो दुनिया की निगाह में वली, आलिम और शहीद हैं, क़यामत के रोज़ मुँह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। एक हदीस मुबारका बहुत अहम है, इसको पढ़ते वक्त तो जिसको कहना कि काटो तो बदन में लहू नहीं। अगर आप कोई छोटी बड़ी नेकी करते भी है ना, तो इस हदीस को ज़रूर हफ्ते में एक बार पढ़ें और इसके मुताबिक अपने आप को चेक करें। क्या है हदीस? आपका इरशाद मुबारक है, क़यामत के दिन सबसे पहले एक शहीद को लाया जाएगा, अल्लाह ताला इसे अपनी नेमतें गिनवाएगा और शहीद इन नेमतों के इकरार करेगा। अल्लाह इससे पूछेगा तूने इन नेमतों का हक अदा करने के लिए क्या अमल किया? वो कहेगा मैंने तेरी राह में जंग की हत्ता के शहीद हो गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तू झूठ कहता है, तूने बहादुर कहलवाने के लिए दुनिया में जंग की तो दुनिया में तुझे बहादुर कहा गया, यानी तेरा मकसद ये था कि लोग मुझे बहादुर के मेरे नाम की इस्लामिया हों तो अखबारों में छपे और वो हो गया। दैट्स इट, यू गॉट योर पॉइंट, खत्म। फिर फरिश्तों को हुक्म हो गए इसे मुँह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाए। इसके बाद वो आदमी लाया जाएगा जिसने खुद भी इल्म सीखा और दूसरों को भी सिखाया और कुरान पढ़ा, अल्लाह ताला इसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा। वो आलिम इनका इकरार करेगा, तब अल्लाह ताला इससे पूछेगा इन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए तूने क्या क्या अमल किया? वो अर्ज़ करेगा या अल्लाह मैंने इल्म सीखा, लोगों को सिखाया और तेरी खातिर लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तूने झूठ कहा। दुआ करें अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करना। तूने इल्म इसलिए सीखा ताकि लोग तुझे आलिम कहें और कुरान इसलिए पढ़कर सुनाया कि लोग तुझे कारी कहें, सो दुनिया ने तुम्हें आलिम और कारी कहा। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाए। इसके बाद तीसरा आदमी लाया जाएगा, पहला कौन था? शहीद। दूसरा कौन था? आलिम। तीसरा कौन है? जिसे दुनिया में खुशहाली और हर तरह की दौलत से नवाजा गया था, अल्लाह ताला इसे अपनी नेमतें जताएगा। वो शख्स इन नेमतों का इकरार करेगा, फिर अल्लाह ताला सवाल करेगा मेरी नेमतों का हक अदा करने के लिए तूने क्या कुछ किया? वो कहेगा या अल्लाह मैंने तेरी राह में इन तमाम जगहों पर माल खर्च किया जहाँ तुझे पसंद था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तूने झूठ कहा, तूने सिर्फ इसलिए माल खर्च किया ताकि लोग तुझे सखी कहें और दुनिया ने तुझे सखी कहा। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत। क्या ऐसे शहीद को इज़्ने शिफात मिलेगा? नहीं। क्या ऐसे आलिम को सिफारिश की इजाज़त मिलेगी? नहीं। क्या ऐसे सही को सिफारिश की इजाज़त मिलेगी? हरगिज़ नहीं। तो तो दुआ कीजिए कि हम अल्लाह की निगाहों में उससे अच्छे हों जो हम अपनी या दूसरों की निगाहों में होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी मुद्दत तक जन्नतियों के से काम करता रहता है लेकिन इसका खात्मा जहन्नमियों वाले काम पर होता है, और एक आदमी मुद्दत तक जहन्नमियों वाले काम करता रहता है लेकिन इसका खात्मा जन्नतियों वाले काम पर होता है। मुस्लिम की रिवायत। क्या पता चला? एक तो किसी को गलत हालत पे देखकर मायूस नहीं होना चाहिए। कभी कमेंट ना दे, ये तो बहुत बुरा है, ये नहीं ठीक होगा, ये नहीं होगा, क्या पता कल वो आपसे अच्छा बन जाए, आप खड़े रहे और वो आपसे आगे जन्नत में चला जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आज आप अच्छे काम कर रहे हैं तो मान ना करें, क्या पता सिर्फ एक कदम जन्नत से बाहर हों और आप फिसल जाएँ। देखिए ना, आप रास्ता भटकें, यहाँ से लाहौर जाते हुए आप यहीं से भटक जाएँ, ये आप कामोकी के बाद जाके भटकें, पहुँचेंगे नहीं। ये दुआ करें जन्नत में पाँव लग जाए, एक पाँव लग जाए। बाद लोग बड़ा बहस करते हैं, हाय जन्नत में क्या लेना है, किधर किधर। तो ह्यूस्टन में हमारी एक सिस्टर थी, सिस्टर हन्ना थी, वो अरब सिस्टर थी, तो वो मुझे उनकी बात अब याद आ गई है। कहती थी, आई डोंट माइंड वेयर एवर अल्लाह विल सेंड मी, आई जस्ट वॉन्ट कि अल्लाह ताला स्टेप मी इन द जन्नत। मुझे कोई नहीं परवाह कि अल्लाह मुझे जन्नत में अदन दे, महाल दे, मोती दे, मैं कहती हूँ बस अल्लाह मेरे पाँव जन्नत में लगा दे, क्योंकि उसमें लग गए फिर वापस नहीं है। तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कभी भी पीछे ना करें। इन दोनों हदीस पर गौर करने से ये बात वाज़े हो जाती है कि किसी शख्स के बारे में लोगों का ख़ुद से ये तय कर लेना कि फलां फलां वाकई अल्लाह के नज़दीक बड़ा चुना हुआ है, सही नहीं। लिहाजा ये तय करना भी दुरुस्त नहीं कि अहले ईमान में से किसे सिफारिश की इजाज़त मिलेगी और किसको नहीं। गुफ्तगू का हासिल ये है कि चूँकि इस बात का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं कि वली का दर्जा कौन पाता है, आलिम या शहीद के मर्तबे पर कौन फायज़ होता है, लिहाजा ये इल्म भी अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं कि क़यामत के रोज़ सिफारिश की इजाज़त किसको मिलती है और किसको नहीं मिलती। ये जाने बगैर कि किसे इसने सिफारिश मिलेगा, किसी को अपना सिफारशी मुकर्रर कर लेना इंतहाई अबस और बेकार फेल है। गौर कीजिए, दुनिया में तो कोई शख्स किसी ऐसे वज़ीर या मशीर को हाकिम आला के सामने अपना सिफारशी बनाने के लिए तैयार नहीं होता जिसका अपना मुकदमा अदालत में ज़ेर समात हो, इल्ला ये कि अदालत में इसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए, यानी अदालत ही उसको आज़ाद कर दे कि ठीक है इट्स फाइन। फिर आखरत के मामले में ऐसे लोगों को अपना सिफारशी बनाना कैसे अक्लमंदी कहला सकता है जिनके अपने मुकदमात अभी अदालत में ज़ेर समात हों। ये आखिरी मिसाल समझ आइए। देखिए ना, अगर जज साहब के पास सिफारिश करने वो बंदा या उसका कोई कारिंदा आ जाए कि जिसका अपना कोई मुकदमा अदालत में हो, तो कहेगा आप उसकी तो फिक्र छोड़ें, आप पहले अपनी तो बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं। तो ये बात गौर तलब है। ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे मामले सीधे रखे, कहीं हम ही ना बेंडिंग में हो। वो कहते हैं कि खुद पकड़ेंगे, तो ये कैफियत ना हो जाए। तो ये पॉइंट समझ आ गया। खुलासा क्या है इस पॉइंट का? कि सिफारिश की इजाज़त सिर्फ उसको मिलेगी जिसका अपना कोई केस अभी अंडर कंसिड्रेशन नहीं है। दूसरी बात है, जो रियल में आलिम है, रियल में शहीद है, रियल में सखी है, यानी इखलास के साथ काम करने वाला। और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो नेकी करवा वो अखलास के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करा। ये टॉपिक क्लियर है जी? आप
ये जो हदीस है जिसमें रियाकारी का जिक्र है, इसमें ये मुझे क्वेश्चन था कि अगर हम कोई भी नेकी करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि पता नहीं ये कबूल भी हो रही है, कहीं हमारा पर्पस ये ना हो कि अगर मैं किसी को कुछ भी दे रही हूँ, मुफ्ती सदका भी बन कर रही हूँ, और वो जाके किसी को कह देता है कि भाई फलाने मुझे दिया, तो हमें मतलब ये खौफ हर वक्त रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रियाकारी के जुमरे में ये चीज़ आ जाए, और हम ये मतलब जैसे अगर मैंने आपको दिया, आपने उनको बताया, और वो जाके सबको बता दें कि मैंने दिया है, तो उससे तो मतलब मुझे होगा कि मेरी शोहरत का मुझे दरम्यान में ना ख्याल आ जाए, ये मेरी नीयत का इखलास कैसे पता चलेगा। मैं दुआ तो करूंगी और अमल भी खलूस से करूंगी, और ये भी कोशिश करूंगी कि एक हाथ से दूं तो दूसरे को पता ना लगे, लेकिन फिर भी रियाकारी का खौफ दिल में रहता है।
देखिए, पहली तो बात है, क्या लीवान हो बैनल खौफ वल रिजा, खौफ और उम्मीद के बीच में ईमान है, ये तो रहेगा। दूसरी बात यह कि आपका सवाल बहुत अहम है कि कैसे पता चले कि मैंने ये अमल दिखावे के लिए किया या नहीं किया। सीधा सा जुमला बताऊं, आपका किसी काम को करते ही रहना रिगार्डलेस ऑफ दैट कि यू गेट ऑनर, यू गेट कोई फेमस हो गए, शोहरत मिल गए, किसी ने अच्छा कहा बुरा कहा, आप अगर वो काम कर ही रहे हैं ना, लोग अच्छा के लोगों से बेनियाज होकर तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस बात की दलील है कि आपका काम अल्लाह के लिए था। वट एवर पीपल से, कहने दीजिए, आई एम नॉट पीपल प्लीजर, आई एम नॉट अ पीपल पर्सन, मुझे अल्लाह को दिखाना है। वो कहते हैं तो हदीस में आता है, तिल कल आजीला तो बुशरा, ये मोमिन के लिए अल्लाह की तरफ से एक नक्त खुशखबरी है। सहाबा कहते थे कि हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन फिर होता है। तो आपने फरमाया ये मोमिन के लिए दुनिया में नक्त एक खुशखबरी है, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं आवाज़ है खल्क नकार है खुदा। और ऐसी रिवायतें मौजूद हैं कि बंदे का जो मुकाम या नाम आसमानों पे होता है तो अल्लाह दुनिया वालों के अंदर वही नाम डाल देते हैं, राइट। तो बस आप अपना टेस्ट ये ज़रूर रखें, छोड़ तो नहीं देती। देखिए मिसाल फिर हज़रत नूह की ले लें, कोई उनको रिस्पॉन्स मिला 12 साल बाद एक बंदा, ओफ माई गुडनेस। हम तो अपने कैरियर को देखें तो 12 साल में हमने 12 और 12 24 साल अगर करे कोई तो 2 बंदों को फ़ायदा हुआ हो, हम छोड़ देते, हम कहते कोई आता ही नहीं। आप दर्श शुरू करें, लोग ही नहीं आए और सुन रहे हैं, बदल ही नहीं रहे, सब ख़त्म। नहीं, हमारा दीन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, एफर्ट ओरिएंटेड है। जस्ट पुट योर पार्ट। उनको फ़र्क पड़े ना पड़े, आपको फ़र्क पड़ेगा। क्या अल्लाह ताला पहले रुकू में सूरह बकरा में क्या कहते हैं, अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर हम ना डराएं, तो अल्लाह कहते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पड़ता है। यू शुड पुट योर पार्ट। वो जैसे हज़रत इब्राहिम के लिए आग जलाई गई तो एक चिड़िया ने पानी के चंद कतरे डाल दिए, तो पास बैठे किसी परिंदे ने मजाक उड़ाया कि भाई इतनी बड़ी आग में तुम्हारे ये चंद कतरे क्या कहेंगे। तो कहने लगे मुझे क्या, कल मैं अल्लाह को कह दूंगी मेरी चोंच ही इतनी सी, मेरी चोंच में आई इतना। तो हम सब ने अपनी चोंच के मुताबिक काम करना, करते रहें, लोगों को देख के करना, अकेले में छोड़ देना। और स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं मोटिवेशन कैसे मिलता है, हम तो बड़ी जल्दी डीमोटिवेटेड होते हैं। और बाद स्टूडेंट जैसे मैं डिफरेंट स्टेशन पे जब जाती हूँ ना, तो कहते हैं आपके सामने बड़ा मोटिवेशन होता है, तो फिर बाद में क्या हो जाता है, नहीं फिर वो बात नहीं ऐसे नहीं लगती, बस आप इधर ही रहें, ये है वो है। तो मैंने एक दफ़ा मिसाल दी थी चार्जर की, आप देखिए आपका फ़ोन है ना 90% दिखा रहा है, बैटरी फुल है, यूज़ कर लें, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद 80 होगा 70, और हो सकता है थोड़ी देर में वो आपको लो बैटरी सिग्नल दे दे 20 पे जाके, आपके तो हो फ़ोन तो बंद हो जाएगा भी। नहीं भाई, क्या करें, या तो यूज़ ही ना करें कि बंद ना हो जाए, या दूसरी सूरत क्या कि आप उसको चार्जर में लगा दें। आप यूज़ करें साथ चार्जर पे लगा दें, ये मोटिवेशन होता है। आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि दूसरों को डरा दें। दूसरों कहते हैं कि आपके ख्वाब इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि दूसरों की नींदें उठ जाएँ। तो अगर आपने खुद ही ख्वाब दे के खुद ही अपनी मेहनतें करनी है तो आप नहीं कुछ कर सकते। तो बस करते रहें, करते रहें इंशाल्लाह, ठीक है। कि और मुझे सूरह मोमिनून की भी आयत याद आ रही है कि कुछ लोग हैं जो नेकियाँ करके भी डरते हैं। तो हज़रत आयशा ने पूछा था अल्लाह के नबी, ये चोर और शराबी है? कहा नहीं है, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, ये तहज्जुद पढ़ने वाले भी हैं, नेकियां करने वाले, इसके बावजूद डरते हैं कि पता नहीं रहमान ने कबूल भी करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। अब अगला टॉपिक बहुत ही अहम है, शिफात और वसीला। मेरे लिए दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स साथ आ गई हैं कि वसीले और सिफारिश में क्या रब्त है या क्या फ़र्क है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को निजात के लिए वसीला पकड़ने का हुक्म दिया है। इरशाद मुबारक है सूरत मायदा 35, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला इलैहिल वसीला तवजाहिदु फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और इसकी तरह वसीला तलाश करो और इसकी राह में जिहाद करो, उम्मीद है तुम कामयाब हो जाओगे। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने निजात के लिए 3 बातों का हुक्म दिया है। देख लीजिए, पहली बात इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। दूसरी बात वब्तगू इलैहिल वसीला, इसके बारे में वसीला तलाश करो। और तीसरी चीज़ वजाहिदु फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिद्दोजहद करो, मेहनत करो। तकवा और जिहाद की इस्तलाहें तो बहुत वाज़े हैं क्योंकि कुरान पाक में बहुत जगह आता है, अलबत्ता वसीले के बारे में लोगों ने इख्तलाफ़ किया है। बस लोग कहते हैं यहाँ वसीले से मुराद औलिया, सुलहा और शहदा वगैरह का वसीला है, जो क़यामत के रोज़ हमारी सिफारिश करेंगे। अपने इस मौक़ के हक़ में वो अमूमन दलाइल पेश करते हैं। क्या दलाइल पेश करते हैं? अब ये देखिए ठीक नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, वो उसको उन्होंने रेफरेंस में रखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता हुई तो अर्ज़ किया, अल्लाह मैं तुझसे अपने हक़ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ कि मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने मोहम्मद वसल्लम को कैसे पहचाना? हज़रत आदम ने अर्ज़ किया जब तूने मुझे अपने हाथ से पैदा फरमाया और मेरे अंदर अपनी रूह डाली तो मैंने अपना सर उठाया और अर्श के पायों पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे मुझे पता चल गया कि तूने अपने नाम के साथ इसी नाम को तरजीह दी है जो तमाम मखलूकात में तुझे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम तूने सच कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुझे कभी भी पैदा ना करता। हाकिम की रिवायत है, अभी सुनिए लेकिन आगे इसके ऊपर बहस होगी। दूसरी एक और हदीस ऐसे लोग पेश करते हैं कि एक नाबीना आदमी रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मुझे बीना कर दे, यानी आंखें आ जाएं, देखने के काबिल हो जाऊं। आपने इरशाद फरमाया, अगर तू चाहे तो सब्र कर और अजर ले, और चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करूं। इसने अर्ज़ की, दुआ फरमाइए। आपने फरमाया, वुजू करके 2 रकत नमाज पढ़ और ये दुआ मांग, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जुहु इलैका नबीयिका मुहम्मदिन नबीयिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाजिही लितुक्दाली अल्लाहुम्मा फशफ्फहु ली। अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे मेहरबान नबी के वास्ते से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, बस मैंने तवज्जो की इस हाजत में नबी के जरिए अपने रब की तरफ ताकि मेरी हाजत पूरी कर दी जाए। या अल्लाह, मेरे हक़ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात या दुआ कबूल फरमा। अब ये एक दूसरी रिवायत है। तीसरी भी एक आती है, हज़रत उमर के ज़माने में कहत पड़ा तो आपने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से बारिश तलब की। कौन थे ये? नबी के चचा। और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतस्कीना व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मी नबिय्यिना फस्कीना। या अल्लाह, हम पहले तेरे नबी का वसीला तेरे सामने लाते थे तो तू हम पर बारिश बरसा देता था, अब हम अपने नबी के चचा का वसीला तेरे पास लाए हैं, बस हम पर बारिश बरसा दे। और इसके बाद बारिश हो गई। बुखारी की रिवायत है। अब आप देखिए, कुरान मजीद की इन आयात और अहादीस के ये वाक़ियात से बाज़ अक्ली दलाइल भी वसीले के हक़ में पेश किए जाते हैं। मसलन, हक़ में आला तक रसाई के लिए वसीले की ज़रूरत, जो इससे कबल हम लिखाए हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई कुरान मजीद की आयत में वसीले से मुराद फौत शुदा या गैर मौजूद औलिया सुलहा और बुज़ुर्गों का वसीला है या कुछ और? तो हम आगे वसीले के बारे में कुछ दलाइल पढ़ेंगे। जहाँ तक पहली रिवायत है, कौन सी थी? कि हज़रत आदम ने अर्श पे कलमा लिखा हुआ देखा था। तो याद रखिए कि ये रिवायत तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक मौजू है, वज़ा की हुई, फैब्रिकेटेड, खुद से बनाई हुई, झूठी, लिहाजा इस पर बहस की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता बाकी दोनों वाक़यात दुरुस्त हैं। नबीना साहबी का वाक़या तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद और बहकी में मौजूद है, और नासिरुद्दीन अल्बानी की सही सुनन तिरमिज़ी से ये अल्फाज भी लिए गए थे। वाक़े की हकीकत ये है, यहाँ से आपको हदीस पढ़ने का तरीका भी आएगा कि हदीसों के ऊपर बहस कैसे होती है। वाक़े की हकीकत ये कि एक नबीना साहबी रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और दरख्वास्त की, दुआ फरमाएं, अल्लाह करीम मुझे देखने वाला कर दे। आपने खुद भी इसके लिए दुआ फरमाई और इसे भी नसीहत फरमाई कि जाकर अल्लाह के हजूर यूं दुआ मांग, मैंने अपने रब के हजूर नबी से दुआ करवाई है, बस है अल्लाह ताला तू नबी अकरम की दुआ मेरे हक में कबूल फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबीना साहबी की दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला ने साहबी की बिनाई लौटा दी। बात समझ रहे? वाक्या कुछ और होता है, अपेरेंटली कुछ और लगता है। दूसरा वाक्या ये कि हजरत उमर के ज़माने खिलाफत में कहत पड़ा तो हज़रत उमर ने नबी के चचा हज़रत अब्बास से बारिश के लिए दुआ करवाई और ख़ुद भी ये दुआ मांगी, या अल्लाह, पहले हम नबी के वसीले से दुआ करते थे तो तू बारिश बरसा देता था, अब हम नबी के चचा के वसीले से दुआ मांग रहे हैं, बस हम पर बारिश बरसा दे। फतुल बारी में इमाम इब्ने हजर ने हज़रत अब्बास की दुआ के अल्फाज भी जो नकल फरमाए हैं वो ये हैं, या अल्लाह, ये गुनाह आलूद हाथ तेरी बारगाह में फैले हुए हैं और हमारी पेशानियाँ तौबा के लिए तेरी तरफ झुकी हुई हैं, या अल्लाह, हम पर बारिश फरमा। चुनाचे हज़रत उमर और अब्बास की दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी। दोनों वाक़या से जो नतायज अखज़ होते हैं वो ये हैं। नंबर एक, ये हैं अहम पॉइंट जो नोट किए जा सकते हैं, किसी मुसीबत और मुश्किल के वक्त में अपने में से किसी जिंदा और मौजूद मुत्तकी नेक और काबिल एहतराम शख्सियत को दुआ के लिए वसीला बनाना जायज़ है। यानी पहली शर्त है जिंदा, मुर्दों से नहीं। देखिए, जिस वक्त नबी के चचा से मांग रहे हैं तो नबी की कब्र या आपका रोज़ा तो उस वक़्त भी मदीना में था, फिर उनका नाम क्यों नहीं ले दिया? तो पता चला जिंदा, यानी नबी सल्लम की ज़िंदगी में कह सकते थे कि अल्लाह अपने इस नबी के वसीले से या इसके चेहरे के नूर से बारिश बरसा। और अरबों के शेर हैं, नबी सल्लम के चेहरे के बारे में कसीदा है कि आपके चेहरे को देख कर बारिश हो जाती है। बात थी, अब फौत हो गए, अब नहीं हो सकता, चूँकि ये बात जिंदा थे, अब्बास से करवा ली गई, लेकिन हज़रत खदीजा से नहीं कराई गई क्योंकि वो फौत हो चुकी थी। तो ये दूसरी शर्त है। फिर तीसरी बात क्या है कि मुत्तकी नेक और काबिल एहतराम शख्सियत को दुआ के लिए वसीला बनाना जायज़ है, यानी आज भी कर सकते हैं। नेक बंदे आपके ख़ानदान में, घरों में, माशरे में, कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई नमाजी हैं, कोई सच बोलते हैं, आप उनसे कहें दुआ करें, उनकी दुआ लीजिए, दुआ कीजिए, दुआएं दीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप खुद आपका डायरेक्शन कोई और दूसरे को आप सिर्फ दुआ का कह दें, ये भी दुरुस्त नहीं है। फिर मुसीबत और मुश्किल के वक्त ख़ुद भी दुआ करना ज़रूरी है, जैसा कि रसूलुल्लाह ने नबीना सहाबी को नसीहत फरमाई, या दूसरे वाक़े में हज़रत उमर ने पहले ख़ुद दुआ मांगी फिर हज़रत अब्बास से दुआ मांगने की दरख्वास्त की। तो ये लाजिमी है, क्योंकि जब लोग दूसरों से मांगते हैं, दूसरों का नाम ले लेते हैं ना, तो फिर अमूमन वो ख़ुद नहीं मांगते, उनको लगता है शायद सिस्टम ख़राब हो जाएगा, हम सही दुआएं नहीं मांग रहे, गड़बड़ हो जाएगी, चलो जिनको कह दिए फिर वही हमारे लिए दुआ करें। तो ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात इन वाक़े से ये साबित होती है कि गैर मौजूद बुज़ुर्गों को वसीला बनाना जायज़ नहीं है। अगर जायज़ होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत अब्बास को वसीला बनाने के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाज़िर होते और इन्हें वसीला बनाते, जो बिला शुबा अब्बास से आला अफसल थे। बात वाज़ेह है ना। बस इन वाक़ा से गैर हाजिर और या फौत शुदा शख्सियात वगैरह का वसीला तो कतन जायज़ नहीं है, बस अलबत्त ज़िंदा बुज़ुर्गों की दुआ को वसीला बनाने का जवाब साबित होता है। गैर हाजिर और फौत शुदा अम्बिया और अलिया सुलहा को वसीला न बनाने के मौक़ की तायद इन दलाइल से भी होती है। मसलन नबी सल्लम ने अपनी सारी हयात तय्यबा में किसी भी मौके पर इब्राहिम, मूसा, ईसा या किसी जलीलुल कदर पैगम्बर को अपनी दुआ में वसीला नहीं बनाए। आपको कितनी दुआएं आती हैं कुरान की और हदीस की? हर एक सोचे। अमूमन हमारे कल्चर में एक बुक पेश की जाती है 40 रब्बाना, यानी कुरान पाक की जो दुआएं होती हैं ना वो मोस्टली रब्बाना से शुरू होती हैं, और जो हदीस की दुआएं होती हैं ना वो अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं। तकरीबन 700 के करीब हदीस से दुआएं साबित हैं। आलमोस्ट कुरान की तकरीबन 40 से 50 के करीब दुआएँ मौजूद हैं। आप आज जाइए इस नीयत से जाकर चेक करें कि क्या ये दुआएं किसी के वसीले से मांगी गई। सरे सबको आती हैं छोटी छोटी दुआएं। हज़रत आदम की दुआ, पहले नबी थे ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, क्या कहा? रब्बी मोहम्मद, रब्बे इब्राहिम, नहीं क्या कहा? रब्बना, हमारे रब। आपका अपना ताल्लुक रब से, आप किसी दूसरे को बीच में क्यों लाते हैं? सीधी सी बात है, आपका रब जाने और आप जाने, ठीक है। चलिए हज़रत यूनुस की दुआ सबको पसंद है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, कुछ तो कह देते किसी नबी का नाम, कुछ कुछ नहीं कहा। फिर इसी तरह से आप देखिए और दुआ करिए, किस नबी की है? हजरत अय्यूब, अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंता अरहमु राहिमीन। हजरत जकरिया ने क्या दुआ मांगी? रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। और हजरत इब्राहिम से सीखते हैं, चले उन्हीं की बात को हुज्जत बना लेते हैं, रब्बी हबली मिन सालिहीन, ए मेरे रब मुझे सालिहीन में से दे दे। तो पूरे कुरान की दुआएं आज आपके होंगे, ऐप भी कुरानी दुआएं हैं, मसनून हैं। आज इस क्रिटिकली नज़र से देख कर आइएगा कल के सबक से पहले कि दुआएं मांगते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या अंदाज इख्तियार किया। यकीन कीजिए सिर्फ दिल की खिड़कियाँ खोल कर, तासुब के पर्दे हटाकर हम जब ये सारे मौजूद सुनते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चेंज आ जाती है। तो ख़ुलासा क्या निकला फिर सारी बात का? कि वसीले का जो ताल्लुक़ है वो ऐसी चीज़ों से है जो ज़िंदा भी हो और ख़ुद इंसान उस वक्त मौजूद भी हो और नेक हो, मुत्तकी हो, वगैरह वगैरह। फिर आप देखिए कि इसमें एक और चीज़, अहदे सहाबा में किसी सहाबी का रसूलुल्लाह को अपनी दुआ में वसीला बनाना साबित नहीं, ना ही किसी सहाबी का रसूलुल्लाह की कब्र पर हाजिर होकर आपसे दुआ करवाना साबित। ये बताइए एक सवाल का जवाब, सहाबा कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत ही आज हमको? ज़ुबानी तो हमें, कलामी हमारी या ज़बानी हमारी, अमली मोहब्बत उनको थी। वो तो जहाँ पसीना गिरता था वहाँ अपने बर्तन रख देते थे, आपके कदमों के नीचे हाथ रखते थे। एक शख्स आया था किसरा के पास से, किसी नॉन मुस्लिम बादशाह का एलची था, एम्बेसडर था, तो जाके उसने कहा कि मैंने सारी दुनिया के बादशाहों और इधर उधर देखा, लेकिन जो मोहब्बत और इज्जत मोहम्मद के साथ ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे करते मैंने किसी को नहीं देखा। बात बात है। तो फिर जब उन्होंने नहीं किया तो मुझे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, अहदे सहाबा के बाद अहदे ताबईन के तर्ज अमल का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है। हज़रत इमाम अबू हनीफा ने एक आदमी को कब्रिस्तान में ये कहते हुए सुना, ए कब्र वालो, क्या तुम्हें खबर है मैं कई महीनों से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं तुमसे सिर्फ दुआ कराने की दरख्वास्त लेकर आया हूँ, क्या तुम मेरे हाल से वाकिफ हो या गाफिल? इमाम मौसूफ ने इसकी बात सुनकर पूछा, क्या उन्होंने तेरी बात का कोई जवाब दिया? सवाल समझिए, आप तो कब्र पे खड़े हैं, साल से 2 साल से आना जाना लगा हुआ, 5 साल से, एक जवाब बताएं, कभी कब्र में से जवाब आया है? तो पूछा कि आया? आदमी ने कहा नहीं। तब इमाम साहब ने फरमाया, सुखकल्लक, सुखकन यूं कहते हैं हाथ से, फिटकार तुझ पे, धुतकार है जैसे हांकना होता है ना, वह तरी बतरी दाख, और तेरे हाथ खाक लोदो, तेरे हाथों को मट्टी लग जाए। कई फतु कल्लिमु, कैसे कलाम करेंगे अजसादन वो जिस्म, ला यस्ततीउ न जवाबन, जो ताकत भी नहीं रखते जवाब की, वला यमलिकू न शय्यम, जो कुछ इख्तियार भी नहीं रखते, वला यस्माउ न सौता, और आवाज़ किसी की सुनते भी नहीं। और उसके बाद फिर इमाम साहब ने यह आयत पढ़ी, बमान तभी मुस्मे मन फिल कुबूर, ए नबी तो अपनी बात उनको नहीं सुना सकता जो कब्रों में मदफून हैं, सूरह फातिह 22। तो इस वाक्य से पता चला कि ताबईन के दौर में भी फौत शुदा बुजुर्गों को शिफात के लिए वसीला बनाना ममनू और नाजायज समझा जाता था। सारी बात का खुलासा कुरान पाक की आयत में जिस वसीले की तलाश की बात है, इससे मुराद गैर हाजिर फौत शुदा औलिया कराम हरगिज़ नहीं। वो क्या है उसको हम कल पढ़ेंगे, और इस पर मेरा एक लेक्चर मौजूद है ये आयतों पर कि फिर किस किस चीज़ का वसीला बना सकते हैं। कल बिल्कुल बिगनिंग में इंशाल्लाह ये टॉपिक आ जाएगा कि आपके मेरे लिए किन चीज़ों का वसीला बनाना जायज़ है। ठीक है, चलिए, जज़ाक अल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।